आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
नमस्ते, 30 दिसंबर है आज। दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं कुलदीप मिश्र। दिल्ली की सीमा पर महीने भर से भी ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच मीटिंग चल रही है। कह रहे हैं कि ये बातचीत निर्णायक हो सकती है, कोई फैसला इससे निकल के आ सकता है, लेकिन अभी तक इतना ही सामने आया है कि सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। हरियाणा में लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं और इस पर किसान आंदोलन का असर दिखा है। बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही पहले के मुकाबले, इस पर भी बात करेंगे। और रजनीकांत के राजनीति में न आने से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स बदलते बदलते फिर वहीं आ गई है। राजनीति में सिद्धांतों की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल इक्वेशन की बात कर रहा हूं। बीजेपी को उम्मीद रही होगी कि रजनीकांत आएंगे तो कुछ वोट काट लेंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, तो अब क्या हो सकता है? और ये भी कि कमल हासन का रोल तमिलनाडु इलेक्शन में क्या होगा। और आखिर में बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले तीसरे टेस्ट मैच में क्या भारतीय टीम मैनेजमेंट कमजोर कड़ियों जैसे कि हनुमा विहारी और मयंक अग्रवाल को रिप्लेस कर सकता है, और रोहित शर्मा और केएल राहुल क्या वापस आ रहे हैं। लेकिन पहले हेडलाइंस।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चीन के साथ लद्दाख सीमा पर जारी विवाद का अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है, ऐसे में यथास्थिति बनी हुई है। अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति से जुड़े कई जगहों पर ईडी ने आज छापेमारी की। अवैध खनन मामले के सिलसिले में लखनऊ और अमेठी में गायत्री प्रजापति के परिवार के आवासीय और आधिकारिक जगहों की तलाशी ली गई। भीमा कोरेगांव केस में आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज ने एनआईए की विशेष अदालत में मांग की है कि एनआईए और सरकारी वकील प्रकाश शेट्टी को ये आदेश दिया जाए कि वो उनके खिलाफ लगाए गए झूठे आरोपों को वापस ले। गुजरात के भरूच से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनसुख वसावा को मना लिया गया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से मुलाकात के बाद मनसुख वसावा ने अपना इस्तीफा वापस लेने का फैसला कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार को 500 करोड़ रुपए के निवेश के नए प्रस्ताव मिले हैं। इसके तहत वाराणसी में करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से स्पिरिचुअल हॉलीडे होम बनाने का भी प्रस्ताव है। अमेरिकी लोगों में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद अब अमेरिका की नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी वैक्सीन की डोज ली है। मोदी सरकार ने देश में एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4573 करोड़ रुपए की एक इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज माफी की योजना पेश की है। ये राहत एथेनॉल उत्पादन में लगे बड़े और छोटे सभी तरह के उद्योगों को मिलेगी। रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और डीजीपी को चिट्ठी लिखकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पंजाब में जियो नेटवर्क साइटों पर तोड़फोड़ की घटनाओं में उनके हस्तक्षेप की मांग की है।
आज तक रेडियो पर यह है डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर, और मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। बड़ी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक किस्सा आपको सुनाता हूं। है ना, ये किस्सा हमारे रंग रंगीले प्रजातंत्र का है। एक आदमी है, कपिल गुर्जर नाम है उसका। नाम आपको शायद अभी याद ना आए, पर ये वही आदमी है जिसने शाहीन बाग प्रोटेस्ट के दौरान गोली चलाई थी, हवा में फायर किया था। वो वहाँ प्रोटेस्ट में पहुँचा था प्रोटेस्ट का प्रोटेस्ट करने, और फायरिंग के बाद पुलिस उसको वहाँ से ले गई थी। वो कपिल गुर्जर आज गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हो गया, और कुछ ही घंटों बाद जब इस पर विवाद हो गया तो उसे आनन फानन में पार्टी से निकाल भी दिया गया। गोली चलाने का केस अभी उस पर चल रहा है, जमानत पर वो बाहर है। बीजेपी के लिए निगल पाना इसलिए मुश्किल हो गया इस बात को, क्योंकि बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने कपिल गुर्जर को आम आदमी पार्टी का मेंबर बताया था। उस समय कुछ तस्वीरें उसकी आई थी उस समय, जिसमें वो आप नेताओं के साथ खड़ा भी था। और बीजेपी सांसद हैं मनोज तिवारी, उस समय दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उन्होंने उस वक्त सीधे सीधे कहा था कि आम आदमी पार्टी ने शाहीन बाग में गोली चलवाने की साजिश रची है। पुराना बयान है फरवरी का, पर सुनिए काम का है आज।
शाहीन बाग में गोली चलाने वाला व्यक्ति आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सिद्ध हुआ है, जिसको संजय सिंह ने स्वयं उसको पार्टी ज्वाइन कराई है आम आदमी पार्टी। अब इस पे कई बड़े सवाल उठते हैं कि आम आदमी पार्टी ने ऐसी साजिश रची क्यों।
तो ये कपिल गुर्जर को गाजियाबाद के बीजेपी के कुछ स्थानीय नेताओं ने पार्टी आज ज्वाइन करा दी, लेकिन जब विवाद हुआ तो शाम होते होते उसे निकाल भी दिया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष। उन्होंने ट्वीट किया कि कपिल गुर्जर की विचारधारा बीजेपी से मेल नहीं खाती और उसकी सदस्यता को अमान्य घोषित किया जाता है। स्वतंत्र देव सिंह के इस ट्वीट को मनोज तिवारी ने भी रीट्वीट किया है। किस्सा यहीं खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। भारी उम्मीदों के बीच सरकार और किसानों की बातचीत आज 22 दिनों के बाद हो रही है, करीब महीने भर से, बल्कि और चार दिन ज़्यादा ही हो गए हैं। 34-35 दिनों से किसानों का विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है। दोनों पक्ष बातचीत की मेज़ पर आज आए हैं, बैठे हैं, और कहा जा रहा है कि ये डिसाइसिव बातचीत हो सकती है, निर्णायक बातचीत हो सकती है, ये बातचीत का फाइनल राउंड हो सकता है। 26 नवंबर से ये प्रदर्शन चल रहे हैं, ट्रैक्टर और ट्रॉली में किसान वहाँ दिल्ली की सीमाओं पर सोते हैं, वहीं उनका लंगर लगता है। मांग उनकी यही है कि ये जो 3 कृषि बिल सरकार लेकर के आई है उसे वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, लीगल गारंटी दी जाए। अभी जब मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बातचीत चल रही है कई घंटों से, और जैसा कि हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं, अभी इतना ही साफ हुआ है कि सरकार ने तीनों कानूनों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल अभी मैंने हमारी आज तक रेडियो रिपोर्टर पॉलिमी साहा से बात की, जो दिल्ली के विज्ञान भवन में मौजूद हैं जहाँ ये बातचीत चल रही है। मैंने उनसे पूछा कि क्या कुछ निर्णायक अभी बातचीत में निकला है।
नहीं, अभी तक कुछ निर्णायक निकल के नहीं आया है। करीबन 2:30 बजे से ये मीटिंग चल रही है और जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स है इस वक्त चल रहे हैं, क्योंकि बीच में थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक हुआ था जहां पे लंगर का खाना आया हुआ था किसानों के लिए और वो खाना मंत्रियों ने भी उनके साथ शेयर किया, और उस ब्रेक के बाद सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स इस वक्त शुरू हो रहे हैं। जो किसानों ने 4 मुद्दे रखे थे, 4 पॉइंट का एजेंडा था उनके लेटर में इस मीटिंग में आने से पहले, उन मुद्दों को लेकर बात हो रही है। पहले 2 पॉइंट्स तो यही थे जो ब्रेक से पहले हुए, जो कि था कि आप ये तीनों कृषि कानूनों को वापस लीजिए, जो कि उनकी एक डिमांड थी, और दूसरी जो डिमांड थी वो थी MSP को लेकर कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक लीगल गारंटी के तौर पर हमें दीजिए। जो सरकार का कहना है कि हम इन तीनों कानूनों को वापस नहीं ले सकते। एक कृषि कानून, एक कानून बनाने में काफी वक्त लगता है, काफी चर्चा होती है और उसके बाद ही ये कानून सामने आए हैं। आप चाहते हैं अगर कोई संशोधन हो तो वो हम मानने को तैयार है, हम करने को भी तैयार है। आप हमें क्लॉज बाय क्लॉज, पॉइंट बाय पॉइंट बताइए कि क्या दिक्कतें हैं आपको, हम उस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि हम पूरी तरह से इन तीनों कानूनों को वापस ले लें तो वो नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात जो MSP की थी, सरकार का ये कहना है कि MSP को लेकर हम सोच सकते हैं, आप जिस तरह से एक लीगल गारंटी चाहते हैं, हमने पहले ही कह दिया था आपको कि MSP जो है वो था, है और रहेगा। हम इसको आपको लिखित में भी देने को तैयार थे, ये हमारे प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स में थे जो कि हमने आपको 9 दिसंबर को भेजा था, पर आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। लीगल गारंटी आप चाहते हैं, जो भी हो हम बातचीत करने को तैयार है, पर वो हम उसी वक्त आपको गारंटी दे सकते हैं जब आपका ये जो आंदोलन है खत्म कर ले। तो वहां पर बात जो हम अपने सूत्रों से पता कर चुके हैं, वहां तक हमें पता है क्योंकि ब्रेक हुआ था और हम बात कर पाए थे अपने सूत्रों से, और फिर अब वो सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग्स चल रही है। जो अब तक पता चला है, जो दूसरी बात है वो है कमिटी फॉर्म करने की बात की है केंद्र सरकार ने, कि चलिए हम एक कमिटी फॉर्म करते हैं जिससे हम इन तीनों कानूनों को बैठकर पढ़ेंगे और क्लॉज बाय क्लॉज आपके जो मुद्दे हैं आप सामने रखिए, हम अपने तर्क सामने रखेंगे। तो एक कमेटी बना सकते हैं जिसमें दूसरे स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट वगैरह, एक्सपर्ट्स वगैरह, हम उनको भी सामने ला सकते हैं ताकि वो भी आपको समझाए कि इन कानूनों में आपके लिए ऐसा कुछ नुकसानदायक नहीं है।
पॉलिमी, जो मुख्य बात थी वो तो पहले ही राउंड की बातचीत में होनी थी कि ये कानून सरकार वापस लेगी या नहीं, उसमें किसी तरह से कोई पीछे हटने को सरकार तैयार है या नहीं, या दूसरी बात थी कि MSP को लीगल गारंटी पर कोई कुछ निकल के आता है नहीं। सरकार ने कहा है कि इस पर सोच सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि पहले किसान अपने घर लौटें। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि किसानों की उम्मीदों के अनुरूप तो ये मीटिंग अभी तक जा नहीं रही है। जो बाकी 2 बातें हैं, आपने कहा कि 4 चीज़ों का एजेंडा था, 4 सूत्रीय एजेंडा था किसानों का, बाकी 2 जो बातें हैं जो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स में डिस्कस किया जा रहा है वो क्या हैं?
जो बाकी 2 है वो, एक है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020, जो ड्राफ्ट बिल है। किसानों का कहना है कि इससे एक तरह से बैकडोर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा पावर सेक्टर का, तो वो चाहते हैं कि ये जो ड्राफ्ट बिल है, जो अभी सिर्फ प्रपोज्ड है, ड्राफ्ट ही फॉर्मेट में है, उसको आप पूरी तरह से वापस ले लें। और दूसरा जो है वो है जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन दिल्ली एंड अदर एरियाज की बात हो रही है, जो पोल्यूशन एंड स्टबल बर्निंग को लेकर है कि किसमें पीनल प्रोविजंस है कि आपको करोड़ों रुपए देने पड़ सकते हैं एज जुर्माने के तौर पर अगर आप स्टबल बर्निंग करते हुए पाए गए वगैरह वगैरह। किसानों का कहना है कि इन प्रपोज्ड प्रोविजंस को आप चेंज कीजिए, इन पीनल प्रोविजंस को इन इस ऑर्डिनेंस में से वापस ले लीजिए। तो ये दो और मुद्दे हैं किसानों के।
ये थी विज्ञान भवन से आज तक रेडियो रिपोर्टर पॉलिमी साहा। और इन्हीं किसानों के विरोध प्रदर्शनों के बीच हरियाणा में लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए और उसके नतीजे आज आ गए। किसानों की नाराजगी हरियाणा और पंजाब में ही ज्यादा देखी है। जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर वो हरियाणा और पंजाब से ही आए हैं, तो इसका असर भी इन्हीं प्रदेशों में ही दिखना था और दिखा भी है। तो दो नगर निगम की और 3 नगर पालिकाओं की सीटों पर बीजेपी हार गई है। उसकी सहयोगी पार्टी जेजेपी, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उसकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि सब जगह हार गई है, कई जगहों पर जीती भी है। मैंने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर सत्येंद्र चौहान से, जो चंडीगढ़ से इन नतीजों पर नज़र रखे हुए हैं। उनसे पूछा कि नतीजे क्या रहे।
देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हरियाणा में 7 निकाय चुनाव हुए हैं, जिनमें 3 नगर परिषद हैं, नगर पालिका हैं और नगर निगम है। और इनमें से सिर्फ रेवाड़ी और पंचकुला, रेवाड़ी नगर परिषद का प्रधान और पंचकुला नगर निगम का मेयर, ये 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। इसके अलावा सोनीपत एक बड़े मार्जिन के साथ कांग्रेस पार्टी के मेयर ने जीता है, उकलाना निर्दलीय, धारूहेड़ा निर्दलीय, और इसके अलावा अंबाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा है, उनकी पत्नी शक्ति रानी शर्मा वो जीती है। तो ये चुनाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जेजेपी दोनों के लिए एक निराशाजनक रहा है। यहाँ तक कि जेजेपी जो बीजेपी का सहयोगी दल है वो अपना खाता तक पूरे हरियाणा में नहीं खोल पाया। तो कुल मिलाकर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे चुनाव, चाहे सांपला नगर पालिका है, धारूहेड़ा नगर पालिका है, उकलाना नगर पालिका है, रेवाड़ी नगर परिषद है, अंबाला नगर निगम है, सोनीपत नगर निगम है और पंचकुला नगर निगम है, इसमें सिर्फ पंचकुला और रेवाड़ी में बीजेपी को सफलता मिली है। बाकी सभी जगह पर निर्दलीय प्लस कांग्रेस या फिर अन्य दल, वो एक लंबे संख्या में, लंबी परिस्थिति में और लंबी लड़ाई में कहीं ना कहीं जीत कर आए हैं।
सत्येंद्र, अभी बिहार के चुनाव हुए विधानसभा के, उसके बाद राजस्थान निकाय चुनाव में भी जब बीजेपी आगे चल रही थी तो ये कहा गया बीजेपी नेताओं की ओर से कि जनता ने कृषि कानूनों पर मुहर लगाई है, लेकिन हरियाणा में उल्टा हुआ है जहां नाराजगी के स्वर ज्यादा हैं। तो किसान आंदोलन का ही इसे असर माना जाए।
देखिए, इस चुनाव से पहले जब हरियाणा में किसान आंदोलन हरियाणा और पंजाब में शुरू हुआ था तो सोनीपत का बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में 16,000 वोटों से कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद अब ये दूसरी परीक्षा निकाय चुनावों की हुई है और जिस तरीके से नतीजे आए हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो ये आंदोलन सोनीपत जो कि एपिक सेंटर है, वहीं से शंभू बॉर्डर शुरू होता है और वहीं पर पंजाब और हरियाणा के तमाम किसान धरने पर बैठे हुए हैं। तो वहां पर जिस तरीके से मेयर चुनाव जीता है और पूरे हरियाणा में जीते हैं, तो इसमें बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का इन चुनावों पर साफ असर है। लेकिन दूसरी बात, सवाल ये खड़ा होता है, भारतीय जनता पार्टी एक शहरी पार्टी है और ये जो निकाय के चुनाव हुए हैं इसमें देहात का इलाका ना के बराबर है, यानी कि चाहे धारूहेड़ा है, उकलाना है, पंचकुला है, सोनीपत है, अंबाला है, इन शहरी चुनावों में निकाय के चुनाव हुए हैं। तो अगर शहरी मतदाता ने सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ वोट किया है तो आने वाले जो समय है उसमें बीजेपी और जेजेपी को बैठकर आत्म चिंतन करना पड़ेगा। और जो एक किसानों का गुस्सा है, कहीं ना कहीं अब ये आम आदमी का एक गुस्सा बनता जा रहा है, वो इन चुनावों में निकल कर आया है।
आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।
दो खबरें बहुत दिनों से देख रहे हैं, एक तो ये कि वैक्सीन बनकर तैयार है, बस आने ही वाली है, और दूसरी ये कि सुपरस्टार रजनीकांत राजनीति में उतरने वाले हैं। वैक्सीन तो चलिए नए साल में आ ही जाएगी, लेकिन रजनीकांत ने कह दिया है कि वो राजनीति में फिलहाल नहीं आ रहे, यानी 2021 का तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन उनके बिना होगा। उन्होंने COVID-19 और अपनी हेल्थ कंडीशन को इसकी वजह बताया है, यानी अभी भी रजनीकांत एक अनटेस्टेड पॉलिटिकल फोर्स तमिलनाडु में बने रहेंगे। ये खबर तो आ गई थी, आपने सुन ली होगी, पर बात इससे आगे की है। तकनीकी तौर पर देखें तो उनके इस फैसले से बीजेपी बड़ी निराश होगी, जो इस बार बड़ी ऊर्जा से तमिलनाडु का चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। निराश क्यों होगी? क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी कि जो AIADMK सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वोट होगा, उसका एक हिस्सा रजनीकांत ले जाएंगे, यानी वो डीएमके के पाले में जाने से बच जाएगा और इससे AIADMK और बीजेपी गठबंधन को फायदा होगा। लेकिन अब रजनीकांत आ नहीं रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, रजनीकांत का पेरियार पर एक पुराना बयान है जिसे वहाँ बीजेपी और संघ के पुराने नेता पसंद करते हैं, क्योंकि पेरियार का जो एंटी ब्राह्मणवाद और ईश्वर में यकीन न रखने वाला जो नैरेटिव है, जब तक वो तमिलनाडु में वो नैरेटिव पॉपुलर रहेगा, बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होगी। तो ये उम्मीदें थी बीजेपी की रजनीकांत की एंट्री से, जो अब धराशायी हो गई हैं। अब आगे क्या होगा ये तो मेरी अपनी समझ है, लेकिन थोड़ा पक्की समझ वाले व्यक्ति से बात करते हैं। मैंने चेन्नई बेस्ड सीनियर जर्नलिस्ट डी सुरेश कुमार से बात की और उनसे पूछा कि रजनीकांत के राजनीति में न आने से क्या रुक गया है वहाँ की पॉलिटिक्स में और क्या स्टेक पर आ गया है।
ये जो डिसीजन उन्होंने लिया कि ये राजनीति में नहीं आएंगे रजनीकांत, तो उसका ये तो एकदम रिजल्ट ये हुआ है, अभी तमिलनाडु में फिर से दोनों ड्रेविडियन पार्टीज के बीच ही लड़ाई होगा 2021 असेंबली इलेक्शन में, यानी कि AIADMK जो अब यहाँ पे रूलिंग पार्टी है और DMK जो यहाँ का विपक्षी पार्टी है। तो इसके पहले जब रजनीकांत ने अनाउंस किया था कि वो पार्टी में वो राजनीति में आएंगे और अपना पार्टी बनाएंगे, तो उस समय लग रहा था कि शायद एक थर्ड सीरियस प्लेयर यहाँ पे खड़े हो सकता है। ऐसा एक मामला यहाँ पे इसके पहले सिर्फ 2006 में हुआ, जब विजयकांत आए थे तो उनको 8% वोट मिला था उस साल के असेंबली इलेक्शन में। तो अभी ये थर्ड सीरियस प्लेयर का मामला नहीं रहा, क्योंकि रजनीकांत को एक करिश्मा था, क्राउड पुलर थे वो, तो यदि वो आते तो डेफिनेटली दोनों पार्टियों का जो वोट बैंक थे उसमें से थोड़ा थोड़ा वो ले लेते। और थर्ड प्लेयर अभी शायद कमला हासन वो थर्ड प्लेयर बन सकते हैं, लेकिन उनका असर इतना नहीं होगा जितना रजनीकांत के आने से हो सकता था। और एक बात भी है इसमें, जब तक रजनीकांत ने अपने पार्टी को लॉन्च करने का मामला यहाँ पे रखा था, तब तक बीजेपी जो है उन्होंने ये सोचा कि किसी ना किसी तरह से ADMK को थोड़ा प्रेशर दिला के उनसे ज्यादा सीट ले लें हम इलेक्शन में लड़ने के लिए अलायंस में। तो इसीलिए पिछले एक महीने पहले जब यहाँ पे अमित शाह आए हुए थे, तब ADMK ने गठबंधन बनाया था बीजेपी से, लेकिन बीजेपी के जो नेता थे यहाँ पे वो बहुत कड़ी मुकाबला कर रहे थे ADMK से। उन्होंने एड़प्पाड़ी पलनीसामी को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट करके मानने में, पब्लिकली मानने में उन्होंने थोड़ा संकट किया था, लेकिन अभी बीजेपी ADMK के साथ ही जाएगी, तो ये अभी फैसला हुआ है।
एक और चीज, क्या इस बारे में कोई हिंट मिल रहा है कि भले ही रजनीकांत अभी राजनीति में नहीं आ रहे, पर क्या वो चुनाव से पहले AIADMK और बीजेपी अलायंस को सपोर्ट करने का ऐलान कर सकते हैं, ये देखते हुए कि पास्ट में वो नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दे चुके हैं, या इस असेंबली इलेक्शन में वो फिलहाल कोई स्टैंड नहीं लेने वाले, इस बारे में क्या कुछ क्लैरिटी है अभी?
अभी तो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इसमें अच्छा रजनीकांत की भलाई इसमें ये होगा कि वो चुपचाप अभी स्पेक्टेटर बन जाए और जो राजनीति हो रहा है उसको वो देखे बाहर से। अभी यदि वो किसी को सपोर्ट देते हैं, और शायद वो सपोर्ट BJP ADMK अलायंस को गया, तो उनका जो क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत ठोक खाएगा यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने जब राजनीति में आने का तय किया था तो उन्होंने चेंज करना है, यानी कि जो प्रेविडेंट पार्टी से इसको इसके अलावा कोई नया पार्टी को हम पावर में लेकर आना यही रखा था। यदि अभी वो बीजेपी और ADMK को सपोर्ट करते तो ऐसा लगेगा जो पार्टी 10 साल से यहाँ पे पावर में है ADMK उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका असर नेगेटिव हो सकता है उनके ऊपर। बुद्धिजीवी जो है, जो बीजेपी का एडवाइस कर रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग, वो तो मान रहे हैं कि रजनीकांत लास्ट मिनट में अपना सपोर्ट BJP ADMK अलायंस को देंगे, लेकिन ऐसे होने की संभावना बहुत बहुत कम है। और जैसे मैंने बोला, रजनीकांत की भलाई भी इसी में है कि वो चुपचाप अभी स्पेक्टेटर बनके राजनीति में जो हो रहा है उसको देखते रहे वहां से।
अच्छा, कमल हासन की पार्टी के बारे में बताइए, वो भी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है, एक तरह से थर्ड फ्रंट कह सकते हैं उसे। जिन मुद्दों को उठा रहे हैं कमल हासन इलेक्शन से पहले, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दावा किया था कि AIADMK सरकार में हर छोटे बड़े काम का रेट फिक्स है, करप्शन जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। ग्राउंड पर कुछ असर है कमल हासन फैक्टर का, क्योंकि ये भी एकदम नए हैं अभी?
नए हैं, और पिछले लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने खड़ा हुआ तो यहाँ पे जो क्या था, ओवरऑल तो उनको 4% वोट मिला, लेकिन अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है, जो नगर के कॉन्स्टिट्यूएंसीज जैसे है चेन्नई, कोयम्बतूर, सेलम, मदुरई, तिरुची, इन जगहों पे उनके कैंडिडेट्स को 10% से ज्यादा वोट मिला है। तो अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कमल हासन का जो एक्सेप्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है इस बार भी। अभी रजनीकांत भी नहीं आ रहे हैं, तो शायद जो लोग दोनों द्रविड़ियन पार्टी को नहीं चाहते वो कमल को वोट दे सकते हैं, लेकिन ग्राउंड में अभी देखने से उनको भीड़ तो आ रहा है। आज भी वो रामनाथपुरम में है और अभी मैंने तस्वीर देखे वहां से कि तो भीड़ तो आ रहा है, लेकिन भीड़ के हिसाब से हम कुछ अभी तय नहीं कर सकते, क्योंकि भीड़ तो ये सिनेमा स्टार है तो उनको देखने के लिए भी आ सकता है। जैसे 2011 में हुआ था, वड़ी वैल्यू करके यहाँ पे एक बहुत मशहूर कॉमेडियन है, वो डीएमके के लिए कैंपेन कर रहे थे तो इतना भीड़ आया, तो एक समय ऐसा असर पड़ा कि शायद डीएमके जीत जाएगा उस साल, लेकिन जब मतदान का दिन आया लोग तो सीधा सीधा एडीएमके और डीएमडीके अलायंस को वोट दे दिया। तो भीड़ से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कमल जो बात प्रस्ताव रख रहे हैं, जो सामने रख रहे हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार का, और उन्होंने अपने थोड़े थोड़े मैनिफेस्टो पे रिलीज किया है, जो बोल रहे कि हाउसवाइफ्स को, यानी कि जो घर में काम करते हैं हाउसवाइफ्स, उनको तनख्वाह देंगे करके बोल रहे हैं, सैलरी देंगे, और बोल रहे हैं कि हम सारे घर में हम इंटरनेट और कंप्यूटर दिला देंगे। तो ये थोड़ा नया सा एक मैनिफेस्टो इन्होंने रखा है, और यदि ये इसको सही तरह से ले सकते हैं तो आने वाले इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में ये थर्ड फ्रंट हो सकते हैं, यानी कि 2021 में नहीं लेकिन 2026 में, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा बैटल है उनका, उनका भी एज थोड़ा कम नहीं है अभी।
और अब क्रिकेट की बात, क्रिकेट पर बात करने में आजकल आनंद आ रहा है, क्योंकि फीनिक्स परिंदे की तरह इंडियन क्रिकेट टीम ने जो पलटवार किया है ना ऑस्ट्रेलिया पर मेलबर्न में, आनंद आ गया उसे देख के। माइकल क्लार्क, रिकी पॉन्टिंग, मार्क वॉ, माइकल वॉन, ये सारे जो पूर्व खिलाड़ी हैं, इन्होंने ये कहा था कि बड़ा एक तरफा मुकाबला होगा विराट कोहली के बिना, मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों के बिना, लेकिन अजिंक्य रहाणे, जिन्हें इंटरनली टीम में जिंक्स कहा जाता है, उनका निकनेम है जिंक्स, तो जिंक्स जिनकी टीम में जगह भी उस तरह से पक्की नहीं थी, उन्होंने टीम को लीड किया, सेंचुरी बनाई और जिताया। लेकिन अब जीत की खुमारी के बाद वक्त है कि अपनी कमजोरियों को देखा जाए और उस पर बात की जाए। 7 जनवरी से तीसरा टेस्ट है सिडनी में, कुछ खिलाड़ी हैं जो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, और चूंकि कॉम्पिटिटिव दुनिया है तो दूसरे खिलाड़ी हैं जो उनकी जगह टीम में आने को तैयार हैं। तो तीसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्या चेंजेस की दरकार है, जो नए खिलाड़ी आएंगे वो किस ऑर्डर पर खेलेंगे, मैंने बात की हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद इकबाल से।
देखिए, दूसरे टेस्ट मैच में जीत के बाद बहुत ज़्यादा कोई गुंजाइश तो नज़र नहीं आती, क्योंकि जब आप जीतते हैं तो सब कुछ ठीक ठीक नज़र आता है, लेकिन स्टिल दो स्पॉट ऐसे हैं अभी भी जिसको कि टीम इंडिया अगर दुरुस्त कर पाए तो बहुत बहुत अच्छी बात होगी। पहला जो चेंज है वो तो सीधे टॉप में मयंक अग्रवाल का फॉर्म अभी एक चिंता का विषय बना हुआ है, लगातार दो टेस्ट मैचेस में वो फेल हुए हैं, तो एक वो कमजोर कड़ी जरूर दिखाई दे रहे हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर, और क्योंकि वो जल्दी जल्दी आउट हो रहे हैं तो इसका प्रेशर सीधे मिडिल ऑर्डर पे आ रहा है। और एक और चेंज जो मुमकिन है कि हो जाए वो है हनुमा विहारी मिडिल ऑर्डर के अंदर, उनकी जगह पर लोकेश राहुल को लेकर के आए, लेकिन मैनेजमेंट अगर उनके साथ भी स्टिक करना चाहे तो बुरी बात नहीं है, लेकिन मयंक अग्रवाल के ऊपर जरूर एक तलवार लटक रही है।
इकबाल, ये भी खबरें हैं कि तीसरे टेस्ट में रोहित शर्मा खेलेंगे, बड़ा हाइप है इसको लेकर, और जो तलवार लटक रही है वो मयंक अग्रवाल और हनुमा विहारी के सिर पर लटक रही है, तो रोहित शर्मा इन दोनों में से किसको रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर रोहित शर्मा आते हैं तो आपके हिसाब से क्या बैटिंग ऑर्डर उनके लिए एकदम ठीक होगा?
नहीं, अगर रोहित शर्मा को आप खिला रहे हैं तो मुझे लगता है कि ओपन ही कराइए, और ओपन ही करेंगे, और मोस्ट लाइकली यही होगा कि मयंक अग्रवाल बाहर जाएंगे और रोहित शर्मा ओपन करेंगे शुभमन गिल के साथ। और ये अच्छा भी है कि देखिए आप ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, कई लोग कहेंगे, ये दलील देंगे कि मयंक अग्रवाल को आपने दो टेस्ट मैच के बाद क्यों बाहर करना है, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छे रन बनाए, 1000 के आसपास रन है उनके, तो इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए किसी खिलाड़ी को, थोड़ा और मौका मिलना चाहिए। लेकिन हकीकत यही है कि आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में खेलने का एक अलग दबाव होता है, और क्योंकि विराट कोहली भी मिडिल ऑर्डर के अंदर नहीं है, तो अगर आपका ओपनर जल्दी आउट हो जाता है तो फिर एक प्रेशर बहुत बड़ा आ जाता है मिडिल ऑर्डर के अंदर। तो उस प्रेशर से बचने के लिए वहां अगर रोहित शर्मा आ जाते हैं, शुभमन गिल ने अच्छी बैटिंग की दोनों पारियों में दूसरे टेस्ट मैच में, और एक अच्छी साझेदारी बन पड़ती है, निकल पड़ती है, तो फिर भारत के लिए बहुत चीजें आसान हो जाएंगी।
अच्छा, एक और चीज, इकबाल, रवि शास्त्री कोच हैं, उनकी ये बात हमें याद आती है कि 5 गेंदबाजों की रणनीति पे वो टिके रहेंगे, उन्होंने कहा था। तो उमेश यादव अगर फिट नहीं होते हैं तो फिर किस तेज गेंदबाज को मौका मिलेगा? मतलब फर्स्ट चॉइस टी नटराजन होंगे जो कि अभी तक टेस्ट मैच खेले नहीं है, या नवदीप सैनी पर दाम आजमाएगी टीम इंडिया?
देखिए, सबसे पहले तो दुआ हम यही करेंगे और हमें करना भी चाहिए कि उमेश यादव फिट हो जाएं, क्योंकि शमी आपके पास ऑलरेडी नहीं है, तो दो एक्सपीरियंस्ड गेंदबाजों का होना, तेज गेंदबाजों का होना बहुत जरूरी है। वहां पर ऑलरेडी हैं जसप्रीत बुमराह और उनके साथ उमेश यादव रहें तो बेहतर होगा भारतीय टीम के लिए। हमने देखा भी दूसरे टेस्ट मैच में कि किस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने प्रेशर क्रिएट किया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो पहली चीज तो ये कि फिंगर्स क्रॉस्ड कि उमेश यादव फिट हो जाए, लेकिन अगर वो फिट नहीं हो पाते हैं तो जरूर भारतीय टीम को विचार करना चाहिए टी नटराजन के ऊपर, क्योंकि नवदीप सैनी का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है। उनका जो प्रदर्शन रहा है रिसेंटली, जो अभ्यास मैचेस हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, वहां कोई खास वो प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, इसी वजह से सिराज ने बाजी मार ली थी दूसरे टेस्ट मैच में उनके ऊपर। तो डेफिनेटली टी नटराजन को ऐड करना चाहिए स्क्वाड के अंदर, हालांकि शार्दुल ठाकुर भी वहीं हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि टी नटराजन के आने से एक वेरिएशन आपको मिलेगा। लेफ्ट आर्म पेसर आपके पास नहीं है, और वो पेसर अगर आपके साथ जुड़ जाता है तो जरूर उसका अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा।
आज तक रेडियो पर हमारे डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर में आज इतना ही। और भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं पर वक्त की सीमाएं हैं, और आप ही में से बहुत सारे लोग फिर चिट्ठी लिखते हैं कि थोड़ा छोटा ही रखिए, ज़्यादा लंबा मत कीजिए। जैसे कि अनिरुद्ध द्विवेदी ने हमें लिखा है फेसबुक पर, लखनऊ से लिखा है उन्होंने कि आज का दिन या दिन भर में कभी कभी एक ही टॉपिक लंबा खींच जाता है, इतना लंबा ना खींचें कि ऊब होने लगे। ये भी लिख रहे हैं कि शुक्रिया, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है, मैं तो फ़ैन हूँ आज तक रेडियो का। तारीफ की पैकिंग में उन्होंने ये कहा है कि ज़्यादा लंबा ना खींचें कोई भी पॉडकास्ट, तो नहीं खींचेंगे साहब, जैसा आपने कहा वैसे चलेगा आज तक रेडियो। और भी सुनने वाले लोग थोड़ा फीडबैक दीजिए समय निकाल के, ईमेल करिए हमें radio@aajtak.com पर, या आप हमें फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर भी लिख सकते हैं। और एक और चीज़ कि अगर आप अपना ऑडियो, अपने पॉडकास्ट आप स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट या जियो सावन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर, वहाँ पर कंज्यूम करते हैं तो वहाँ भी आप हमें सुन सकते हैं। आज तक रेडियो सर्च कीजिए, वहाँ दिन भर, आज का दिन, ये सब लिख करके अगर आप हमारे शोज़ के नाम लिख करके सर्च करेंगे तो हम आपको वहाँ मिल जाएंगे। आप वहाँ भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिन भर में आज इतना ही। आज की साउंड मिक्सिंग की थी कपिल देव सिंह ने। कल फिर मिलते हैं।